Pomyśl na to. Ty, Jogi, Tapahara, Ty, Gaumy Wodzie, Gwiazd Wielkie, Pani Gwie, और अनगट था पूर्व उसी के पास एक पत्थर को सिराने लिए तकिया बना सो गए थक चुका था। थोड़ी देर में गांव की स्त्रियां पनिहारी वहां पर पानी भरने आई और पहली स्त्री उस सन्यासी को उस योगी को देख कर कहती है संन्यास के लिए पर तकिया का मोह अब तक नहीं गया और वो योगी उस स्त्री की बात सुन लेता है और वो तकिया उठा के फेंक देता है वो पत्थर। दूसरी स्त्री कहती है संन्यास ले लिया पर अकड़ इतनी पकड़ नहीं गई, वो उठ के खड़ा हो जाता है। तीसरी स्त्री जो पानी भरने आई वो कहती है तुमको जो करना है वो करो ना, हम तो कुछ ना कुछ कहेंगे। चौथी स्त्री वो कहती है कि हम स्त्रियां यहां आएंगी पानी भरेंगी और जाएंगी, तुमको कुछ ना कुछ कहेंगे, परंतु तुम प्रभु के गुण गाए जाओ, तुम क्यों डिस्टर्ब होते हो हमारी वजह से, चाहे तुम कुछ भी करो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर। सीधा देख कर चलो तो लोग कहते हैं तुम्हारा तो आसमान की तरफ ध्यान ही नहीं भगवान की तरफ, ऊपर देख के चलो तो लोग कहते हैं कभी मृत्यु को भी देखा करो जीवन में क्या हो रहा है उसको, नीचे देख कर चलो तो लोग कहते हैं इर्द गिर्द की कोई नजर दौड़ाओ, इर्द गिर्द नजर दौड़ाए तो लोग कहते हैं कि इनकी आंखों का ठिकाना नहीं, आंखें फोड़ दो तो लोग कहते हैं कर्मों का फल, चाहे कुछ करो ना करो दुनिया वाले कुछ ना कुछ कहेंगे। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शंकर जी और पार्वती जा रहे हैं साथ में नंदी बैल है, लोग कहते हैं कैसे मूर्ख लोग इतना बड़ा बैल होने के बाद भी पैदल जा रहे हैं, कुछ देर बाद दोनों बैठ जाते हैं बैल के ऊपर, आगे पहुंच के लोग कहते हैं मूक प्राणी वो कुछ बोलता नहीं तो कुछ भी उनके ऊपर अत्याचार करोगे उसके ऊपर, दोनों बैठ गए। शंकर जी को लगता है ये मैं क्या करूंगा, वो उतर जाते हैं पार्वती को बैठाते आगे चलते, लोग कहते हैं कैसी स्त्री पति परमेश्वर उसको चल रहा चला रहे और खुद बैठी, वो उतरती है शंकर जी बैठे, लोग कहते हैं धर्म पत्नी कोई कर्तव्य है कि नहीं पत्नी के, खुद आराम से बैठे और पत्नी को पैदल चला रहे, वो दोनों उतरते हैं और शंकर जी वो पैर के दो पैर पकड़ते और पीछे से पार्वती और उसको उठा के ले जाते, लोग कहते हैं ऐसे मूर्ख कभी देखे नहीं आते, चाहे कुछ करो या ना करो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, जब ज्ञान में आते तो विरोध करते मत जाओ और जब ज्ञान को छोड़ देते तब भी विरोध करते क्यों छोड़ते हो गया फर्क, तब भी हंसते चाहे कुछ कहे कोई कुछ करे कहे, जिसको आगे बढ़ना है वो बढ़ते जाए, वो रुकेगा नहीं किसी के कहने से किसी के बोलने इस यज्ञ में बहुत सारे नियम है, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सी मर्यादा है और लोग उन सब चीजों का बहुत विरोध भी करते हैं। प्रश्न ये है, नियम क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं, किसने कहा ये ज्यादा महत्वपूर्ण, कौन कह रहा है, किसने कहा ऐसा करो, किसने कहा कि क्या कहा से ज्यादा महत्वपूर्ण। इस यज्ञ में भी ऐसे कुछ नियम है, ऐसी कुछ मर्यादा है, हम उन मर्यादाओं की चर्चा करेंगे। कईयों को ये सारी मर्यादाएं पता है, परंतु रिविजन आवश्यक है, क्योंकि ये मर्यादा ऐसे नहीं एक बार पढ़ लिया, एक बार सुन लिया, एक बार भाषण कर दिया, काम पूरा हो, तो हर दिन का है, प्रतिपल का है, समय समय का है, और अपने आप को नियमों में बांध देना सुरक्षा कवच है। नहीं तो इस संसार में विकर्म ही विकर्म होते हैं, मर्यादा एक किला है, कवच उसमें आत्मा सुरक्षित, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा से बाहर गए तो रावण बैठा है, किडनैप करके ले जाएगा। वैसे वो कौन से नियम है, मर्यादा ऐसी 26 मर्यादाओं की चर्चा करेंगे जो हर एक को पता चाहिए और दूसरों को भी सिखाना, दूसरों को भी बताना। सबसे पहली मर्यादा अमृत वेला, जिसका रोज रोज अमृत वेला मिस होता है, जिसका रोज रोज अमृत वेला नींद में गुजरता है, जिसका रोज अमृत वेला आलस में जाता है, जिसका रोज अमृत वेला व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उनके जीवन में कोई दिव्यता नहीं होगी, विचार वही रहेंगे, समय आज यहां है 10 साल के बाद भी वही है, ध्यान में चलते हैं, जो उन्नति हुई वो पहले पहले हो गई, कोई हो बाद में स्थिरता है, नष्ट है, बस वही होती है। लास्ट संजय की मुरली थी, कुमारों से मुलाकात, कुमार अर्थात तीव्रगति वाले, आज कल से आगे हो, कल आज से आगे हो, परसों कल से आगे हो, कुमार रखना तीव्र आगे बढ़ना। अमृत वेला बार बार मिस ही हो रहा है, अभी तक उसका नियम नहीं बना है, तो सबसे पहला काम तो इसका करना है, और इस भट्टी की सफलता इसी में होगी कि आज के बाद कल से कोई भी अमृत वेला कभी भी मिस नहीं है। संकल्प उसके लिए दिनचर्या में परिवर्तन करना होगा, 11 बजे सो रहे, 12 बजे सो रहे, जल्दी सोने, और सोने के बीच में हमारे और सोने के बीच में एक बहुत बड़ी नगरी खड़ी है, डिजिटल नगरी, डिजिटल आकर्षण, जो रात को सोने से पहले एकदम एक्टिवेट हो जाते, तो कैसे उठवाएंगे, लिस्ट बनानी है कि वो कौन से कारण है जिसके वजह से मैं अमृत वेला ठीक से नहीं कर रहा, अपनी मृत्यु में, वो कौन से कारण है जिसके वजह से बार बार अमृत वेले सोते शक्तिशाली नहीं होता है, बहुत नींद आ चाहिए, सारा अमृत वेला नींद में चला जाता है, कब चालू हुआ और कब पूरा हुआ पता ही नहीं चलता। नींद के ऊपर काम करना क्यों नहीं होता? अमृत वेला तो यज्ञ की एक किताब है, नाम है अमृत वेला, कितनों पढ़ी, जिन्होंने पढ़ी है वो फिर से रिवाइज करे, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है अब वो पढ़ना चालू करे। जीवन के सभी समस्याओं का उत्तर अमृत वेला है, किसी से पूछकर कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी नया भाई या वरिष्ठ बहन जिनसे तुरंत पूछते हैं ये क्या वो क्या वो क्या वो क्या वो क्या, और उत्तर जैसे ही देते हैं उदास हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर उनको पहले ही पता है। रस प्रश्न पूछने में, उत्तर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, ये मनुष्य का स्वभाव। प्रश्न पूछने में बहुत रस है, उत्तर तो वही है, बात को याद करो आत्मा को समझ लो, वही तो पूछे तो सब पता है। अपने ही मन को समझना है कि वो वास्तव में उत्तर चाहता है या बस ऐसी, और अगर उत्तर चाहिए तो उत्तर हमने बैठ में लिखना सुबह सुबह उठना, बिस्तर का त्याग करना, नहीं तो थोड़ी देर के बाद फिर से सो जाना। हमारा लौकिक भाई था, जब हम उसके कमरे में थे और वो पढ़ता था, वो क्या करता था, सुबह उठता था पढ़ाई के लिए, और उठते ही वो जो बिस्तर है वो उसको बेडिंग को पूरा लपेट के ऊपर अलमारी के ऊपर और बेड को खड़ा कर देता ताकि वापस नहीं सो, क्योंकि उसको नींद आती थी, ऐसा लगता था फिर जाके सो जाओ, उसको पढ़ना रहता था एग्जाम के लिए, सब समेट देता था, पूरा बेड को ही सीधा कर देता, वापस कौन नीचे करेगा कौन डालेगा युक्ति, उठते ही सबसे पहले बेड का त्याग, दूसरा हो सके तो स्नान ब्रश यहां दांत स्टिमुलेट हो जाने चाहिए, तो यहां कनेक्टेड है सर नर्व्स, ब्रेन एक्टिव हो सके, जिनको फिर भी बहुत नींद आती है वो थोड़ा सा वॉकिंग करे, थोड़ा प्राणायाम कर ले, थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, कुछ तो करे, और बिस्तर पर नहीं करना है, वहां से उठ जाना है, बिस्तर का त्याग, एक छोटा सा आसन अगर घर पे करते हैं ट्रांसलाइट है नीचे बिछा विधि पूर्वक हो ऑफिशियल जैसे, और अमृत वेले की तैयारी कब से चालू होती है, रात से। नींद कैसे की जाती है, एक मुरली में कहा है बाबा ने बहुत थक गए और सो गए, ये अवज है, आप तुमको गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करता है, चाहे तुम करो या न करो, चाट दी गई बाबा से बात की वैसे जाके सो गए, या फिर दिनचर्या में किसी ना किसी श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है तो अमृत वेला माया बचना नहीं, सबसे पहले अमृत वेला ठीक करना है, रात से तैयारी चालू करनी है, जल्दी सोने का प्रयत्न अभ्यास, योग युक्त सोने का अभ्यास, कुछ पढ़कर सोने का अभ्यास, और उठते ही कुछ अभ्यास, आप खुली ये अभ्यास करना है जैसे बाबा ने हाथ रख दी विजय, उठते ही जैसे तिलक दे दिया राज्य अधिकारी को, पहला संकल्प अमृत वेले का सारे दिन तक चलेगा, उठते ही तो लेट हो गया सारे दिन भर, वैसे उठते ही मोबाइल क्या है, रात को सोने की विधि, उठते ही क्या करना है, डेस्क को छोड़ना है, अलग से बैठना है और फिर अलग अलग अभ्यास करने, एक ही अभ्यास। सब लोगों ने कॉमेंट्री सुन रखी है, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, और फिर थोड़ा सा झुकना, फिर मैं परम धाम में तू बाबा भी चलो सदगुरु, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा झुकना, योग पूरा पौने पांच बजे। आज क्या काम पूरा होगा? अब चलो कहां पर, कहां पर, कहां चलो? बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया, क्या जागर मगर राजाओं इधर बैठ पुकारता है। क्या कहता है? क्या जगर मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बात, आ जाओ मेरे लाड पर। स्वर्णिम प्रभात लाया हूं, जल्दी आओ, आओ बेड पर। अमृत मेरा पूरा हो चुका है, अमृत वेला शुद्ध पवन है, शुद्ध पवन बह चुकी, अब इधर आ जाओ, बहुत हो गया, और फिर सो जाओ। अतिंद्रिय सुख, शक्ति शांति अमृत जिसमें नींद का असर ना हो, जरा छपकी ना करे। मैंने मुरलियों में कहा है, अगर अमृत वेला नींद आती है तो क्या करो, आंखों में तेल डाल दो, मुरली में आया ऐसा करना मत। सुबह सुबह बाबा को देखना होता है, कैसे देखना है, आपके फाड़ फाड़ के देखना, कैसे देखेंगे, आके फाड़ फाड़ कर नींद लाओ, फिर भी नींद आती है तो चलते फिरते अमृत में करना है, फिर भी नींद आती है तो कुछ बाबा का ऑडियो सुनो या वीडियो देखो, फिर भी नींद आती है तो कुछ और सुनो, पर सोना नहीं, बस किताब पढ़ो, मुरली पढ़ो, फिर भी नींद आती है, अगर योग होता ही नहीं बिल्कुल, कुछ ना कुछ शिफ्टी रचना जिससे नींद ना आए, और नींद आ गई है तो जरूर कुछ ना कुछ कारण है, नींद शायद पूरी नहीं होगी, शायद शरीर की कोई बीमारी है, सारा ब्लड टेस्ट करो, विटामिन से लेके सब कुछ, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ चुके हैं, शायद रात का भोजन बहुत ज्यादा खा रहे हैं, एकदम पेट भर। योग के लिए दो चीजें खाली चाहिए, बुद्धि और पेट। हमेशा उदाहरण देते हैं, जगदीश भाई जी कहते थे मधुबन में 1980s में भारत के चीफ जस्टिस कृष्णा अय्यर आते थे, उनकी आदत थी सुबह 2 बजे उठने, 2 बजे उठने उठकर अपनी किताबें लिखते थे, लॉ की 84 बुक्स लिखी हुई, अभी अभी शरीर छोड़ा है, एट द एज ऑफ 100 2014 कॉन्शियस कीपर ऑफ इंडियन लॉ जिनको कहा गया है। वो जब मधुबन में आते थे और रात में कल्चरल प्रोग्राम होते थे तो कहते थे मुझे जाने दो, माफ कर, उठ के चले जाते थे, क्यों, क्योंकि मुझे 2 बजे उठना। वो एक संसार का व्यक्ति, वो एक लौकिक व्यक्ति, लौकिक कार्य करने के लिए अपने नियमों का इतना पक्का है कि वो सब कुछ छोड़ देते, कोई कल्चरल प्रोग्राम उसे देखना नहीं, निकल के इंद्रप्रस्थ में चला जाता है, पांडव सोने 9 बजे सोते थे, बराबर 2 बजे से बैठे थे। एक संसार का व्यक्ति अपने नियमों में इतना पक्का है, हम क्यों नहीं हो सकते? और उसे कोई भगवान को याद नहीं करना है, उसको लॉ की किताबें लिखी, भारत के प्राइम मिनिस्टर कितना अंडा सोते, शिवाजी महाराज कितना अंडा सोते थे, किसने पढ़ा है? जीवन चरित्र। अच्छा, क्यों सराज 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 सूरज स्वरज आ गया सबसे पहले तो इसी को ठीक करना, राज से ही संकल्प करना है, यहीं बैठे बैठे संकल्प करना है, इतनी बड़ी सभा के बीच में किया हुआ संकल्प सिद्ध होगा। ये सबसे पहला नियम। दूसरा नियम ब्रह्मचर्य, ए फॉर अमृत वेल, बी फॉर ब्रह्मचर्य, बाकी सब कुछ ठीक है, परंतु ब्रह्मचर्य में गड़बड़, तो भगवान के सामने स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाप इसलिए आया है, एक ही काम करने को आया है, कौन सा? पति को पावन और क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता, लोभी को पतित नहीं कहा जाता, अहंकारी को पतित नहीं कहा जाता। काला मुंह क्रोध वाले के लिए नहीं, पांचवी मंदिर से नीचे गिरना मोह लोभ के लिए नहीं, बाप ये सब चीजों के लिए नहीं आया, एक ही काम करने आया है, कौन सा? पतित से काम, और पतित किसने बनाया है? काम, काम महाशक्ति, कितना बड़ा बात है, क्यों? काम ही महाशक्ति, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, वो भी है, पर ज्यादा फोकस किस पर है? केवल इसके ऊपर, क्योंकि आत्मा जन्म जन्म जितना काम निकाला उनकी वजह से काम किया, क्रोध की वजह से इतना नहीं किया, जितना देवधान काम में है क्रोध दो अहंकार में है, इसलिए यज्ञ का दूसरा और सबसे पावरफुल नियम संपूर्ण अखंड ब्रह्मचर्य। शरीर को कोई हाथ न लगा सके, और देह है क्या? साफ विषय इसमें समय है, बहुत पागल हो गए इस शरीर के पीछे, बड़ी बहुत गो देखा है, बाप आए हैं संपूर्ण पावन बनाए, संपूर्ण पवित्र, कोई ऐसी मुरली है जिसमें बाबा ने कहा ठीक है जितना हो सके उतना पावन बनो, नहीं होता है तो ठीक है, ये आपके लिए कहा है जितना हो सके बाप को याद, सजेशन बाप तुम्हें राय देते हैं बाप को याद, पवित्रता के लिए क्या है? ये बाप का ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस क्या होता है? इस्लाम में फतवा होता है, फतवा जारी करते हैं, वैसे नहीं है, यज्ञ भाई दूसरी किताब लिखी है जगदीश भाई की, पूरी ब्रह्मचर्य जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो इसका अध्ययन करें, और संपूर्ण बाबा की बहुत कड़े वाक्य है जो सेंटर पर आते हैं उनके लिए, ये सारे नियम सेंटर निवासियों के लिए, नगर काला मुंह किया तो एक साल बाप को मूल मत दिखा, साकार रूप नहीं है, 12 मास बाप के सामने नहीं आया, क्योंकि एक ही तो काम करने आता है, बाप बच्चों से ठीक मांगते पवित्र बनते, इस अंतिम जन्म पवित्र बनते, बहुत व्यापार किया देह के साथ, बहुत डूबे रहे दैनिक सुकून, बहुत खेला इस मिट्टी से, कल कहा ना 5 प्रकार की ड्रेस, पहली ड्रेस कौन सी थी? मिट्टी वाली ड्रेस, बदबू वाली ड्रेस, चमड़ी वाली ड्रेस, दाग वाली ड्रेस और खून के तत्वों वाली ड्रेस, कल डाल के आए थे ना, कनेडा कभी कभी रात में से भी निकलता है बाहर। विदेश में एक पक्षी है फिनिक्स नाम का, वो जलता है, राख बनता है और राख से फिर भी खड़ा होता है। विकास की वजह से भूत ऐसा लगता है खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा था, संपूर्ण पवित्र है। और एक दिन अचानक आ जाता है वहां से बचा, वो पेपर तो हो गया, पूरा हो गया, अचानक नया पेपर, बाबा की माँ बात की है बीए का पेपर एमए में आएगा। बीए कर लिया था, पास कर लिया नहीं, अभी एमए चल रहा है, एमए में बीए का पेपर आएगा। तो सोचा था हो गया, एमए ध्यान में आया, बहुत संघर्ष किया, सारा संघर्ष पूरा हुआ और अच्छे से चल रहा है, और अचानक वो पुराना पेपर फिर आ जाए, बीए का पेपर एमए में। ये मुरली ऐसी है तो अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य, संपूर्ण ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य अर्थात केवल काम से संबंधित नहीं, केवल काम जितने संपूर्ण निर्विकार, ब्रह्मा का आचरण, ब्रह्माचरण, ब्रह्माचरण, ये दूसरा है। सभी करेंगे हाथ खड़ा, अखंड ब्रह्मचर्य की बात है। धर्मराज के अंदाज भगवान के सामने हाथ खड़ा किया, कुछ भी हो जाए, सिर भी कट जाए चलेगा, झुकेंगे कितने जुल्म सितम अत्याचार सहन करना पड़े, सब कुछ सहन करें, सब कुछ इसको नहीं, बस विदेश में कहानी है सेंट थेक्ला की, शायद सुनी होगी, थेक्ला नाम की एक कन्या होती है, 19-18 वर्ष की उम्र में उसका किसी से प्रेम है, शादी होने वाली है, वो बालकनी में खड़ी रहती है और वहां से जीसस क्राइस्ट के 400 वर्ष के बाद की कहानी, वहां से संत जा रहे हैं सेंट पॉल, और वो परमात्मा गीत गा रहा है, कोई भजन गा रहा है कि वो जो पवित्र है प्रभु को प्रिय है, दैट इज चेस्ट डियर टू द लॉर्ड, वो जो ब्रह्मचारी है वो परमात्मा को प्रिय है। वो पहले दिन वो थेक्ला वो गीत सुनती है, वो भजन सुनती है, दूसरा दिन सुनती है, तीसरा दिन सुनती है, और एकदम से परिवर्तित हो जाती है, कहती है कि मुझे अपना जीवन भगवान को देना है, और उसका होने वाला पति और उसकी माँ वो कहती है क्या होंगे तुमको, तुम्हारी अब शादी होने वाली है, वो कहती है अब मैं नहीं कर सकती, अब मेरा जीवन परमात्मा समर्पण है। उसको बहुत समझाते है, उसकी खुद की माँ उसको समझाती है नहीं मानती, उसका पति होने वाला पति समझाता है नहीं मानती, और जब बहुत जिद्दी हो जाती है वो लोग उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, उसकी खुद की माँ, और इतना बढ़ जाता है कि वो वहां का जो राजा है उस तक खबर जाती है और उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है, और उस जमाने में जो सजा थी वो थी जिंदा जला देना, सारा गांव देखने के लिए, और फेंकना वैसे वो लकड़ी का तख्ता और आंख, ताकि दूसरी स्त्रियां भी समझे अगर ऐसा कुछ किया तो ये मिशन होगा। पर वो इतनी पक्की, और वो जो सेंट पॉल था उसको भी इतना मारते हैं और उसको भी निकाल देते हैं, हमारे गांव की सभी स्त्रियों को ये प्राप्त कर रहा है, और जैसे ही आग लगाई जाती है उसको जिंदा जलाने के लिए कोशिश करते हैं, अचानक फर्स्ट मेरा कर चमत्कार होता है, बारिश आने सब इधर उधर हो जाते हैं, तूफान आ जाता है और वो छूट जाती है, और वहां से चली जाती है दूसरे कहीं दूर गांव में जाती है, किसी दूसरे शहर में, वहां से उसको फिर वो सेंट पॉल मिलता है, उसके पति को, होने वाले पति को फिर खबर मिलती है, फिर से वहां पहुंच जाता है, फिर से उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगता है, और वहां पर फिर थेकला को पकड़ा जाता है, फिर दूसरी सजा सुनाई जाती है और इस बार उससे भी कड़ी। पहले बात बच गई थी, एक अखाड़ा और उसमें तीन भूखे शेर के बीच में उस थेकला को फेंक देते हैं और वो सब लोग देखने गांव और वो फिर से परमात्मा याद करते हैं ये जीवन पवित्र है। ब्रह्मचर्य को नहीं छोड़ चाहे कुछ भी हो जाए, और वो तीन भूखे शेर पर उसमें से एक शेरनी होती है वो बीच में खड़ी हो जाती है और वो दो शेरों को आने सेकेंड टाइम फिर से बच जाते, वहां से निकलती है फिर तूफान जैसा होता है और वहां से हमेशा के लिए निकल जाती है और फिर दिखाया है वो बहुत बुरा बूढ़ी होने तक एक गुफा में रहती है, वो गुफा आज की तरकी में और जब 80-90 साल की हो जाती है उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है, उसकी प्योरिटी के कारण उसमें हाथों में हीलिंग पावर आ जाती है, जितने पेशेंट आते हैं मरीज आते हैं हाथ लगाते ही वो सारे ठीक होंगे, ऐसी शक्ति उसमें आ जाती है। फिर तीसरा फिर आता है उसके जीवन में, वहां के जो लोकल डॉक्टर्स और फिजिशियन होते हैं उनको ईर्ष्या होती है कि सारे पेशेंट उधर जाए, उसका नाम हो रहा है कि जो उसके पास जाता है उसकी हाथों में शफा है ठीक हो जाए और वो सब मिल के फिर से षड्यंत्र करते हैं। एक बूढ़ी व्यक्ति के विरुद्ध वो 80 साल की होती है, तीन नवयुवक को तैयार करते हैं और कहते जाओ इसका शील बंद करो, क्योंकि उनको पता चलता है ये जो पावर इसमें आई है ये पवित्रता की पावर है और वो तीन युवक जाते हैं गुफा वो यहाँ खड़ी और दिखाया है वो सामने बढ़ते हैं वो पीछे सत्य घटना है या पता नहीं हो नहीं सकता ऐसा, पर बताया है कहानियों में कि वो शरीर समेत उस गुफा में समा जाता है सदैव और वो गुफा आज भी जाता है। क्रिश्चियन धर्म में ऐसी कहानियां बहुत कम है, इस तरह कंप्लीट प्यूरिटी की कहानी, संपूर्ण ब्रह्मचर्य की कहानी जिसने उस पवित्रता के लिए सब को छोड़ प्यूरिटी को नहीं छोड़ा। भारत में ऐसे तीन लोग हैं जो कहते हैं शरीर के साथ विलीन हो गए, कौन कौन ऐसा हो नहीं सकता पर कहते हैं एक तो तुकाराम आमी दातो आमी का दावा और दूसरा चैतन्य महाप्रभु और तीसरा मीरा, ऐसा हो नहीं सकता ड्रामा के अनुसार, हर एक आत्मा को पुनर्जन्म लेना है पर ऐसा गायन है कि केवल इन तीन आत्माओं के कि वो शरीर सहित मुक्ति सदैव मुक्ति उनको मिली, ऐसा हो नहीं सकता, इसका भी ऐसा नहीं होगा, पर जो भी हो प्रश्न है संपूर्ण तो दूसरी मर्यादा कौन सी प्योरिटी, तीसरी मर्यादा सी सेंटर एटमोस्फियर सेंटर का वायुमंडल। एक भाई का फोन आया था, वो कह रहा था हमारे सेंटर के दो तीन भाई ऐसे हम क्या करें, जैसे कोचिंग क्लास पूरी होती है हॉल में बैठ के और पॉलिटिक्स की चर्चा चालू करते थे, आज इसने क्या किया उसने क्या कहा इसने कहा था उसने क्या कहा, सेंटर पर आना और संसार की लौकिक चर्चा करना, बिजनेस की चर्चा करना, पैसों की चर्चा करना, जो भी सेंटर निवासी है उसका यह प्रथम कर्तव्य है कि सेंटर का वायुमंडल शक्तिशाली बनाए, सुमान से पवित्रता से सूक्ष्म धारणाओं से दृष्टि से वृत्ति से यदि हमारी वजह से वायुमंडल दूषित होता है तो खोज है और उसमें भी भाइयों के लिए विशेष जो सेंटर पर रहने वाली बहने हैं वो कौन है कौन है कौन है, मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है यदि उनके प्रति दृष्टि वृत्ति विकारी हो रही है, सोचो कोई मंदिर में दुर्गा के मंदिर में कोई भाई जाता है और उस देवी को देख कर उसकी दृष्टि जितनी खराब होती है और वहां के लोगों को पता चल जाए कि उसके साथ क्या करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है 1902 से पहले, जबकि की शुरुआत हुई 1936, उन्होंने कहा था एक दिन आएगा, अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैडिंग व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा का संदेश पहुंचाएगी। वो कौन है? भविष्यवाणी जैसी भारतीय नारी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। हमारी दृष्टि जितने भाई हैं, जितने कुमार हैं, जो भी सेंटर पर आ रहे हैं, ये नहीं भूलना ये कौन है। अगर ये चाहती तो संसार में बहुत कुछ कर सकती थी और अपने जीवन को, अपने सर्वस्व को इस यज्ञ की वेदिका में समर्पित कर दी। ये साधारण नहीं है। इसलिए भूमि के प्रति दृष्टि कैसी हो, बहुत सुरक्षित हो, बहुत ऊंची हो, वो बाल ब्रह्मचारी है। संसार के लोग और संसार की स्त्रियां तो किसी भी वासना की चक्की है। अनटच्ड शिव की अवधान के लिए शिवप्रिया और निमित्त किसने मनाया? स्वयं भगवान ने चुना है, चाहे वो छोटी सी कन्या ब्रह्मा कुमारी क्यों ना हो, उसको भी किसने चुना? संसार में हजारों स्त्रियां हजारों नारी क्या कर रही है, जाकर देखो वो सारी फिल्में और वो सारे संसार की स्त्रियां तुच्छ ने किया है। तीसरा नियम सेंटर एटमोस्फियर, सेंटर का वायुमंडल शक्तिशाली बनाना। उसके लिए वहां पर ज्ञान युक्त चर्चा हो, पवित्रता हो, दृष्टि पवित्र हो, व्यर्थ चिंतन ना हो, गुटबाजी ना हो, ग्रुप बना के रखे ऐसी जगह, इसके विरुद्ध उसके विरुद्ध पर चिंतन पर दर्शन। वो सोचते हैं कि ये हमको क्या सिखाएंगे, इनके पास अनुभव कम है, हमने संसार देखा है, इन्होंने संसार नहीं देखा, संसार इन्होंने नहीं देखा, पर भगवान उनके साथ है। कितना भी देखा होगा अनुभव तुम्हारे ज्यादा, शिक्षण तुम्हारा ज्यादा होगा, एजुकेशन तुम्हारा ज्यादा होगा, पवित्रता एंड प्योरिटी इज द ग्रेटेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड। चौथा नियम ड्रेस, बी फॉर ड्रेस। ड्रेस कैसा होना चाहिए? ब्रह्मा कुमार और कुमारी को ये मत कहना व्हाइट होना चाहिए, दूसरा बताओ कुछ स्वच्छ कैसा होना चाहिए और गोपन मर्यादा पूर्वक और कैसा होना चाहिए? ड्रेस कैसा होना चाहिए? इस्लाम धर्म में कहा है स्त्रियों के लिए पांच प्रकार की वचन है, स्त्रियों के ड्रेस में पांच चीजें, वो पुरुषों के लिए भी लागू हो सकती है। पहला नियम चेहरा हाथ और पैर बस इतना ही खुला है, ये इस्लाम धर्म में। दूसरा नियम टाइट न हो, कपड़े कैसे हो टाइट न हो। तीसरा नियम ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ना हो, पतले पारदर्शी ना हो। चौथा नियम, ये इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं, बाबा ने ऐसा नहीं बताया, तो इस्लाम धर्म में पांच है। चौथा नियम पुरुषों जैसे ना हो, फीमेल ड्रेस पुरुषों जैसे ना हो। जैसे एक व्यक्ति सिनेमा देखने जाता है और सिनेमा देखता है और कहता है सिनेमा देखते देखते बाजू में कोई एक बैठा है, उसको कहता है वो हीरो बहुत ही अच्छा है, इतनी अच्छी एक्टिंग करता है। वो कहता है वो हीरो नहीं, वो मेरी डॉटर है, कौन है मेरी बेटी, हीरो का पार्ट प्ले कर रहे हैं। वो कहता है अच्छा आप उसके पिता हो, वो कहते नहीं मैं उसकी माँ हूं। माँ भी वैसी हो बेटी भी वैसी, पुरुष हो जैसा ना हो, जीन्स और ये सारे जो मेल ड्रेस है फीमेल ड्रेस अलग है मेल ड्रेस अलग है। और पांचवा नियम बताओ ना तड़प तड़प आकर्षित करने में, इस्लाम में ये पांच नियम, इसलिए तो वो लोग क्या बुरखा। इधर बाबा ने दिखाया है हमारा ड्रेस सिंपल हो, स्वच्छ हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, टाइट ना हो। टाइट ड्रेस अच्छा जो ध्यान करते हैं तब ढीला ड्रेस होता है, गुरु नानक जीसस क्राइस्ट मोहम्मद कैसे ड्रेस है उनका। धार्मिक ड्रेस अर्थात रुटीना है, टाइट अर्थात आर्मी आक्रमण युद्ध, टाइटनेस क्या इंडिकेट करता है बेचैन। मिलिट्री का ड्रेस पहन में नहीं योग करते, ड्रेस अलग होता है योग करते। तो हमारा ड्रेस ऐसा ना हो कि कोई हमारे पीछे पागल हो जाए और वो देखकर ड्रेस, और उसी के साथ जुड़ा है फैशन, टैटू, मेहंदी पाउडर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, डाई, अच्छा लिखना चाहिए डाल दिखाते हैं, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, फैशन। व्हाइट में भी फैशन, व्हाइट में भी बहुत फैशन है, वो फैशन होती है शॉल, बड़े बड़े छेद वाली शॉल, उससे क्या होता है पता नहीं, बड़े बड़े छेद वाली शॉल होती है। विनोबा भावे ट्रेन से जा रहे थे, एक स्त्री थी उसने गजरा लगाया, गजरा पता है, वो पूछते हैं उसको क्या ये गजरा तुमको दिखता है, वो कहती है नहीं इसलिए पहनते गजरा दिखता है, पहना किस लिए किसने पहना दिखाने के लिए। हमारी फैशन है संपूर्ण पवित्रता, हमारा श्रृंगार है संपूर्ण पवित्रता। ये देह का श्रृंगार हमारा श्रृंगार नहीं, हम बुधवार में कुटिया में सुबह सुबह बैठते हैं योग के लिए, अचानक कोई भाई या बहन आ जाती है 3 बजे, इतना पावरफुल सेंट, बेचारे 2-3 भाई जो बैठे हैं परम धाम से नीचे गिरते हैं, सूक्ष्म वतन से नीचे गिरता है, पूरा नाक का पेट्रोल पूरा के अंदर इधर तक चला जाता है इसमें, ऐसा स्ट्रांग और वो भी अमृत के तीन बजे आके योग करते हैं बाकी ग्राम ग्राम अपने एक्सीडेंट जाते हैं। अच्छी खुशबू आनी चाहिए, पसीने की खुशबू नहीं आनी, बदबू नहीं आनी चाहिए, इसलिए कहते हैं हम सेंट लगाते हैं। बोला है किसी मुर्गे का आया है क्या, ये शरीर को कितना भी घिसो आधा ही रहेगा क्योंकि आत्मा ही काली है, कुछ नहीं होने वाला। फैशन चलती फिरती फैशन की दुकान है बड़ी बड़ी, बताया चौथा हमारा ड्रेस बहुत सिंपल हो, सादगी वाला हो, कोई देखे तो उसको याद आए भगवान की, कोई देखे तो उसको लगा लगे ये पवित्र आत्मा है, कोई देखे तो लगे ये रॉयल आत्मा है। इतनी उसमें प्योरिटी हो। और रही बात कलर और रंगीन की, ये दूसरा विषय है, पर जितना हो सके रंगीन की दुनिया को छोड़ देना। दादी प्रकाश मैनी को डिग्री मिली थी डॉक्टरेट की राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और दादी ने वो पहन लिया, तो पहनते ना स्ट्रॉन ऐसा स्ट्रॉन और कोट जो डिग्री मिलती है, तो और अमृत प्रसाद दादा को सामने आते दिखाए बाबा मुझे ये मिला है, तो बाबा ने देखा और कहा बच्ची क्या ब्रह्मा कुमारी से भी बड़ी कोई डिग्री है। सबसे बड़ी डिग्री है ब्रह्मा बनना या ब्रह्मा कुमारी। दादी जान की पर एक किताब लिखी है विदेश के एक ऑथर ने, उस बहन का नाम सेंचुरी ऑफ सर्विस किताब का नाम, दादी जानकी पर लिखी हुई किताब है इंग्लिश में, एक विदेश की बहन है, उसकी प्रस्तावना में लिखा है यदि ये स्त्री विद दिस लेडी हु इज इलिटरेट जो अनपढ़ है जिसको इंग्लिश नहीं आती, अगर ये स्त्री जो अनपढ़ है जो भारत से है जिसको इंग्लिश नहीं आती, यदि वो लंदन जैसी जगह पर अपना परमानेंट स्थायी घर बना सकती है, well then everything is possible, फिर तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये हो सकता है कुछ भी हो सकता है। सादगी सिंप्लिसिटी ये हमारे, उसके बाद में अगला है ई, अगला नियम है इकोनॉमी, यज्ञ की अगली मर्यादा इकोनॉमी, इकोनॉमी अर्थात मराठी में कहते कुछ काट कसर, इकोनॉमी से चलना है, पहले स्थूल इकोनॉमी और फिर सूक्ष्म। स्थूल में कुछ भी चीज हमारे से वेस्ट ना हो, हम मधुबन में देखते हैं पार्टी आती है ढेर सारा थाली भर ले लेते हैं और छोड़ देते हैं, चाय लेते हैं एक गिलास भर के आधा पीते हैं और रख देते हैं, पानी वेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फूड रिसोर्सेस पैसा डीजल पेट्रोल, ये समझना है कि ये हर चीज यज्ञ से। घर में है लौकिक में रहते हैं सैलरी आती है पैसे कमाते हैं, फिर भी ये सोचना मेरी पालना यज्ञ से हो गई, कुछ भी वेस्ट ना जाए हमारे घर से, जितना हो सके भोजन। यकीन बना ब्रह्मा भोजन 16th February 1988 अभ्यर्थवाणी ये ब्रह्मा भोजन दुख भंजक भोजन है, इसमें दवा है और दुआ है, यज्ञ का एक एक कणा मोहर के समान है। अभ्यर्थ तुम्हारा आपने ये बोर्ड लगा हुआ है अगर पांडवों में भंडारे के ऊपर क्या नियम है, कुछ भी वेस्ट ना हो, पानी वेस्ट ना हो। मधुबन में जाते हैं तो कितना वेस्ट करते हैं, पानी भी वेस्ट ना हो। लाइट चालू, पार्टी आती है लाइट चालू और जा रहे हैं लेक्चर सुनने, उधर फैन चालू है, इधर चालू है लाइट चालू, सब चालू। और एक दूसरी बात, मधुबन में जाते हैं माताओं की कहानी, जो लॉक है उसकी चाबी घर में लेके चली जाती है, ब्लॉक लगा के तोड़ना पड़ता है। हर मास में कमल कुंज शांति कुंज कितने हैं, ब्लॉक तोड़ना पड़ता है, वहां चाबी घर में चली जाती है ब्लॉक लगा, कोई कोई अपनी ताला और अपना ब्लॉक लग के चले जाते। बोझ है, मधुबन गए थे पुण्य कमाने, आ गए पाप लेकर। उसके बाद में अगला नियम है भोजन फूड, ये बताया था इकोनॉमी। अगला नियम है भोजन, भोजन में चार बातें, चौका, चौका कहते हैं रसोई। सबसे पहला भोजन कहां से आता है, पैसा कहां से आता है, किसी का शोषण करके पैसा आ रहा है, दो नंबर से पैसा आ रहा है और फिर सोच रहे हैं हमारी प्योरिटी बहुत अच्छी हो जाए, कभी नहीं होगी। गलत मार्ग से पैसा कमाया जा रहा है, पैसा। दूसरा, भोजन जो बना रहा है उसके मन की अवस्था क्या है, मन में व्यर्थ चल रहा है, मन में ये भाव है मैं भोजन बनाऊ बहुत टेस्टी बने और लोग मेरी बहुत तारीफ करें, तो ये तो बाबा के लिए नहीं बना, इच्छा है ऐसा। तीसरा, जाति दोष, भोजन के नैसर्गिक दोष, पत्थर कंकड़ या फिर राजसिक है तामसिक है, कैसा है भोजन का शौक। चौथा, भोजन खाने वाला भोग लगा के खा रहा है या ऐसे खा रहा है। अच्छा, अब ये सभा में कितनी माताएं जो रोज भोग लगाती और बाकी 24 घंटे में एक बार भोग लगाना है जो घर पे भोजन बना सभी माता, और भाई कितने हैं जो भोग लगाते हैं कुछ। अच्छा, ऐसे कितने भाई हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं कुछ। तो जो भोजन नहीं बनाते वो भी उसको पुष्टि दे करता है, और जो भोजन बनाते हैं वो योग युक्त होकर उसको बनाना और खाना। अर्जुन, तुझे अनन्य भाव से मैं स्वीकार करता हूँ, पत्र पुष्प और फल इतना भी मुझे कोई दे दे तो मैं स्वीकार करूंगा, मुझे 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए। भगवान भावना का भूखा और प्रेम का प्यासा, प्रेम का प्यासा भावना का भूखा है, वो भाव देते हैं भाव, अनन्य भाव से भोजन फिर पकाया जाए बनाया जाए। और अगर किसको ज्ञान में लाना है तो मार्ग क्या है, पुरुष के हृदय का मार्ग कहां से चल रहा है, पेट से, पेट को कुछ करो तो दिल खुश हो जाए। तीन चार नियम है भोजन के, भोजन के और तीन नियम। पहला, भोजन ऐसा ना हो जो उत्तेजना उत्पन्न करे, ऐसा आवाज जब तक नहीं आता पता नहीं आता किसी को, ऐसा आवाज आना तिखट। दूसरा, आलस और प्रमाद लाने वाला है भोजन का दूसरा नियम, इतना भोजन खा लिया आता है तो सीधा निद्रा लो। तीसरा नियम, स्वास्थ्य वर्धक होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? हेल्दी डाइट होना चाहिए। ये भोजन के तीन, भोजन के और चार नियम है। पहला, हंगरलेस ईटिंग, भूख नहीं है फिर भी खाए जा रहे, भूख नहीं है थोड़ा सा कुछ ले लो, फ्रूट ले लो, थोड़ा ले लो, बस सारा के सारा लेने की किसने कहा? मनुष्य ये एकमात्र प्राणी है जब भूख नहीं है तब भी खाता है, हंगरलेस ईटिंग। दूसरा नियम ओवर ईटिंग, जितना हम खा रहे हैं उतनी आवश्यकता नहीं है, हम ज्यादा ही खा रहे हैं, ओवर ईटिंग। और जितना व्यक्ति खाता है उससे अपना पेट आधा भरता है और डॉक्टर का आधा। बहुत रहम दिन वो नहीं चाहता कि डॉक्टर की दुकान बंद हो जाए, इसके लिए बीमार पड़ते जाओ और डॉक्टर शॉपिंग करते जाओ, आज इसके पास उसके पास उसके पास, ये भी ठीक नहीं वो ठीक नहीं, अच्छा कोई नया डॉक्टर आया है, हाँ डॉक्टर साहब कोई ऐसी तगड़ी सी दवा तो अच्छी है। सारे रिपोर्ट कराए और जैसे कहो सब रिपोर्ट नॉर्मल, एकदम से उदासी, हमको इतनी बीमारी और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता, बीमार तो हम बहुत है, लोग कितने अच्छे अच्छे बीमार पड़ते हैं, हम बीमारी नहीं पड़ते, हम भी कोई कम बीमारी है क्या? मतलब ऐसे भी कैटेगरी है जिनको बीमार पड़ना है पर पड़ते ही कंट्रोल नहीं है डाइट। तीसरा ओवर ईटिंग, पहला हंगरलेस ईटिंग, दूसरा ओवर ईटिंग, तीसरा रॉन्ग टाइप ऑफ फूड। बच्चों ने बहुत तीखा है, बहुत मीठा है, बहुत चटपटा है, कर्मेंद्रिया उत्तेजित है, योगी का भोजन नहीं। और चौथा नियम भोजन का, क्रोध में भोजन किया जा रहा है, कंप्लेन के साथ, इसमें नमक कम है, इसमें वो नहीं है, इसमें वो नहीं है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, असंतुष्ट होकर भोजन किया जा रहा है, क्रोध में किया जा रहा है, ये चार नहीं होना चाहिए। तो अगला नियम क्या बताया? फूड, उसके बाद में जी, जी अर्थात देना, गिव, तीन चीजें देनी है सबको, खुशी, शुभ भावना और दुआएं। किसी के प्रति भी हमारे मन में घृणा ना हो, नफरत ना हो, ये व्यक्ति का नियम नहीं, मर्यादा है, चाहे जिसने जो कुछ भी किया हो सबके प्रति शुभ भावना, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सबका कल्याण हो जाए, तो ते वांछी लतो ते लाभो प्राणी का। सभी का कल्याण। उसके बाद में एच, एच अर्थात होली कंपनी, और सबसे बड़ा संघ है सत्संग ब्राह्मणों का संघ, सबसे बड़ा सत्संग है शिव बाबा का सत्य का संघ, और इसलिए ऐसी आत्माओं का संघ नहीं करना है जिससे मजबूरी हो जाए, ऐसे दोस्त जो उनके साथ पार्टियों पर जा रहे हैं और बाहर का खा रहे हैं। कल बताया था ना हम बाहर का नहीं खाते, हम किधर का खाते? अंदर का, समोसा का, वो बाहर का खा, तो हम बाहर का नहीं। सुविधाजनक श्रीमत, सत्संग महान आत्माओं का संग करना, और जब जीवन में ऐसा लगे कि बहुत सारी आत्माओं का संग हो रहे हैं, अच्छी अच्छी आत्मा है, तो समझ लेना प्रभु कृपा हो रही है। हमेशा ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि ये कैसे पता चले कि मुझ पर भगवान की कृपा है या नहीं, बिना हरि कृपा कृपा मिले नहीं संता, संत का जीवन में आगमन हो रहा है, बार बार महान आत्माओं के दर्शन हो रहे, अच्छे शब्द सुनाई दे रहे, समझना जीवन में भगवान की कृपा अनुकंपा हो रही है। इसलिए ये सब महान आत्मा ही है यहाँ पर जो बैठे हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, तुम सबसे महान है इस संसार में, तुम आधार मूर्त हो, धार मूर्त। उसके बाद में आए, आए अर्थात इनकल्केट, इनकल्केट अर्थात धारण करना दिव्य गुणों को, ये कैसे करना है? जैसे ज्ञान की भक्ति है, योग की भक्ति है, वैसे दिव्य गुणों की भी भक्ति करनी है। एक दिव्य गुण उठाना और उस पर एक हफ्ता काम करना, डिसिप्लिन, अनुशासन, सहनशीलता, एक हफ्ता केवल सहनशीलता पर काम करना। सहनशीलता गुण भी है, शक्ति भी है। एक एक गुण, 36 गुण, और सेंटर पर जो गुणों की लिस्ट है उसमें हमने एक नया गुण देखा, वैराग्य की वृत्ति भी लिखा है आपके लिस्ट में। वैसे हमारे जो दिव्य गुण है उसमें वैराग्य वाला नहीं है, पर यहाँ सेंटर में वैराग्य की वृत्ति भी लिखा हुआ है, गुणों की धारणा करना। उसके बाद में जे, जे अर्थात जर्नी टू मधुबन, मधुबन जाने के नियम। मधुबन में गए, सामान रखा और घूमना फिरना चालू। कहां पर? शांतिवन के बाहर शॉपिंग, शॉपिंग कर ली, एक बैग लेके गए, आते समय चार बैग। इससे मिलू, उससे मिलू, बाबा मिलन में डायमंड हॉल में बैठे फोन पर बातें, खाने का भी लोग निकालते थे बीच में से ही सैंडविच पीस में। अभी भगवान को उधर भोग भी नहीं लगा जो सैंडविच चल रही, बातें और फोन पर, हाँ हाँ बाबा आ रहे आ रहे आ रहे, वो कोई दूसरा है उधर बैठा उसको बता रहे, इधर खुद ही अनुभव नहीं हो रहा है उसको कहां से अनुभव होगा फोन पर। वो बाबा बोल रहे, और कोई कोई केवल लिखने में बिजी, इधर गुंडली चालू है, इधर खाली लिख रहे नीचे, इधर ड्रिल करा रहे बाबा लिखना चालू है। उधर जा रहे अनुभव इतनी सस्ती चीज नहीं है कि कोई भी चाहे और वो चाहे, और फिर कहते हैं हमको कोई अनुभव ही नहीं हुआ बाबा के पास, और सेंटर पर आकर संगली पर बताते कितना हमको कुछ भी नहीं, क्योंकि किया क्या जाते हैं, शॉपिंग की, बातें की, योग किया ही, क्लासेस सुनी ही, कोई दूसरी दूसरी चीजें कर रहे हैं, मेंटल प्रिपरेशन चाहिए इस लक्ष्य से जाए, इस टर्न में बाबा से मिलने जाना है, साल में एक बार जाना है, इतना भरपूर होके आएंगे, इतना भरपूर होके आएंगे कि पूरी शक्ति सागर करेंगे। हम देखते हैं विदेशी लोग, एक तरफ भारत वाले एक तरफ विदेशी, क्या नशा है उनको, एक साल तक पैसे कमाते हैं, टिकट के खर्चा 1,00,000 रुपए आने जाने, और इतने सब लोग काम करते हैं। हमने देखा विदेश के जितने सेंटर है, सारी बहने, अगर तीन बहने सेंटर पर रहेंगे तीनों भी जॉब करती है, सुबह मुरली सुनाएगी, दिन भर जॉब करेगी, शाम की मुरली सुनाएगी, कोई भी खाने की, सब जॉब करने वाले, सब नौकरी करते हैं और सब पैसे कमाते हैं, और फिर उस पैसे से मजदूरों के लिए जमा करते हैं और फिर आते हैं। इसलिए आते हैं तो इतना उनका क्या क्या चलता है ज्ञान संगठन में, ये रिट्रीट, वो रिट्रीट, आज इसका मौन है, उसका मौन है, आज ये एक्सपेरिमेंट। 10 दिन में जो मधुबन निवासी उनसे भी ज्यादा देते थे, 10 दिन में इतना भरपूर होकर जाते हैं, इसी तपस्या करके जाते हैं। और भारत वालों को भी हम देखते हैं, आए बराबर घूमना फिरना, यहाँ वहां तो यही चल रहे, ये खाओ कि वो खाओ, आज ये बना आज वो बना, जब घूमने जाओ उधर संबलपुर और उधर क्या है वो कुंभलगढ़ और उदयपुर, बाबा भी साथ साथ है, ये भी होता है, सब सब बैलेंस। अनुभव इतनी सस्ती चीज नहीं है, क्या चाहिए वैराग्य चाहिए, प्रभु प्रेम की आग चाहिए, तब अनुभव। इसके बाद में ए अगला नियम यज्ञ का कीपिंग चार्ट, चार्ट रखना सेल्फ प्रोग्रेस का। कल क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, कल क्या गलती की, वही गलती आज तो नहीं कर रहा हूं, कल से आज हम आगे। तीव्र तुषार की परिभाषा बाबा ने दी है, तीव्र तुषार अर्थात जो गलती एक बार कर दी वो दोबारा न करनी। एक बार गलती हो गई, सोच टाइम दो क्यों हुई, किस कारण से हुई, क्या वो फिर से होगी, वही 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 करते रहेंगे, पुनरावृत्ति जननम पुनरावृत्ति मननम पुनरावृत्ति कथन जनरेशन, वही 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 करते रहेंगे। अपना चार्ट खुद ही बनाना और रोज की जो साकार हो रही है वही लिखते लिखते चार्ट भी बना देना है, छोटा सा पांच प्रश्न का रात में सोते समय करते हैं। रेडीमेड चार्ट भी आते हैं मधुबन से, परंतु अपना चार्ट खुद बनाना भी अच्छा कुछ है। उसके बाद है एल, एल अर्थात लव फॉर वन बाबा, एक बाप से प्यार, बस सब देहधारी, देहधारियों से कैसे प्यार करना है, कैसे प्यार करना है, जुड़ा जुड़ा प्यार करना, ऊपर से हाथ घुमा देना बस, और बाबा से सच्चा और जिगरी प्यार करना। इस दुनिया में परमात्मा के अतिरिक्त हमारा सदा कोई भी नहीं है। सब कैसे है, सूरत सौते में दो के बाद कभी ना कभी धोखा जरूर देंगे, एक परमात्मा ही हमारा अपना है, एक से ही नन भगवान, एक बाप दूसरा। उसके बाद अगला नियम है एम, एम अर्थात मुरली चिंतन, कल भी सुनाया था इसके बारे में, चिंतन करना है। केवल सुनने से, पढ़ने से, सुनाने से कुछ और करना है, जैसे वो गोपिया थी वैसी दीवानी थी मुरली, वो कृष्ण वहां पर मुरली सुना रहा है, उसका काजल इधर जा रहा है, पानी इधर गिर रहा है, नशा है वो आएगा चिंतन से, और नशा कैसे आएगा वो पांच बातें कल बताएगी, बताया था ना, दोस्त को क्या करो बढ़ाओ फ्रीक्वेंसी ज्यादा पियो, तीसरा नीड, चौथा कुछ मिक्स नहीं करो, और पांचवा महफिल चीयर्स। मन चिंतन, सोचना अर्थात पैर, चिंतन करना अर्थात डूब, डूब रहे हैं मुरली में कि तैर रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचना नहीं, क्या करना है, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भवर की बातें किया था, मैं पहला खोजा नहीं अगम मो सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, पर मुझने उनने भेद यही, मैं उस गहरे मोती का आशिक हूँ, जो मिला नहीं उसे पा लेने की, तुम मेरी कांटे रोंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों हरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर, गोताखोर पता है ना समुद्र में जाते हुए, मैं गोता को मुझे गहरे जाना होगा, तुम तक पर बैठ मगर की बातें किया करो, गहराई में जाना। उसके बाद में एन, एन अर्थात नो, नो की लिस्ट बनानी है, बाबा ने किस बात के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया, नो, इस परिवार में कोई भी लौकिक संबंध ना हो, सब अलौकिक संबंध, नो सिनेमा, ये सिनेमा बहुत अच्छा है, वो सिनेमा बहुत अच्छा है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, भगवान की मुरली से नहीं सीखा तो सिनेमा से क्या सीखोगे, और ये नहीं भूलना वो 3D है, जो देखा जाता है वो सीधा अमिट छाप छोड़ता है, भूलता नहीं है, और व्यक्ति निगेटिव को और विकार को ज्यादा ग्रहण करता है, पॉजिटिव को और पवित्रता को कम, जो आपने देख लिया बस वो अंदर चला जाता है, और फिर वैसा ही करने की इच्छा होती, लोगों की अपनी एक अपनी व्यक्तिगत लिस्ट बनानी है, कौन सी चीजें जो बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं और फिर भी हम कर सकते। उसके बाद में ओ अर्थात ऑब्जर्विंग श्रीमत, श्रीमत का पालन करना, उसके लिए श्रीमत क्या है वो समझना, उसके लिए मुरलियों का स्टडी समझना पड़ेगा। मुरलियों में आते रहता है ये करो वो नहीं करो, ऐसा करो वैसा नहीं करो। उसके बाद में की भाइयों के लिए है प्रिंटिंग लिटरेचर, नियमावली में है कि यज्ञ का साहित्य बिना निमित्त बहन से पूछकर खुद ही प्रिंट करना, खुद ही पॉम्पलेट बनाना, खुद ही साइट डिसाइड करना, खुद ही वेन्यू डिसाइड करना, खुद ही भोजन डिसाइड करना, खुद ही अपनी किताबों की बुक पब्लिश करना, ये यज्ञ का नियम है। प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर जो भी हो वो इन कंसल्टेशन विद सिस्टर। उसके बाद में क्यू अर्थात क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस, ये इंस्टीट्यूशन में इस तरह का गायन होता है, अर्थात जो भी सेवा की जाए वो कैसी हो, क्वालिटी वाली अच्छी सी, ऊपर ऊपर से नहीं। जैसे हमारे यज्ञ में वो चित्र है ज्ञान में नहीं है तो झगड़ा कर रहे हैं, कोर्स के रूप में चित्र है ज्ञान में नहीं है तो झगड़ा कर रहे हैं, और ज्ञान में आने के बाद शांति से बैठे हुए हैं। तो माता जी के पास टाइम कम है, वो कैसे समझा दे, देखो यहाँ ज्ञान में नहीं है रोटी खा रहे, ज्ञान में आके भी पूरी करते हैं तो दिखाए पूरी, वो चित्र वैसा ही है, ज्ञान में जो है उसमें पूरी दिखाया है और जो अज्ञान में है वो रोटी, उसके पास टाइम कम है चलो फटाफट फटाफट, अज्ञान में रोटी ज्ञान में पूरी, आगे बढ़ो नेक्स्ट चित्र जिसमें ये जिसमें आगे बढ़ो काम चलो फटाफट फटाफट। देखा है ना चित्र, यज्ञ का चित्र है उस कोर्स की किताब में पूरी और रोटी वाला। आर अर्थात रिलेशनशिप, यज्ञ में आपसी संबंध कैसे हो, प्रेम तो रखो मिठास वाले, घृणा ना हो, नफरत ना हो, आसक्ति लगा बने, डिटैचमेंट वाले। जो डिटैचमेंट वाले संबंध है वो लंबा समय टिकते हैं, और जिसमें आसक्ति है उसमें रुकना रुकना चाहते रहते हैं, कभी वो रुकता है कभी वो रुकता है, कभी ये कभी वो, इधर से मैसेज उधर से मैसेज, इधर से मैसेज उधर से, कोई मैसेज नहीं है, इधर इंतजार आएगा 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 आता ही। रिलेशंस उसके बाद में एस साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, मौन और एकांत, ब्राह्मण जीवन का नियम है बीच बीच में मौन हो, दिनचर्या में कम से कम सुबह का समय मौन हो, एकांत का समय निकालना है चुराना पड़ेगा और चिंतन करना होगा। उसके बाद में टी ट्रस्टी, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कैसे रहना है, जैसे बैंक का मैनेजर दिन भर पैसे गिनता है और उसको कहता है ये पैसे मेरे नहीं, मेरी सैलरी आएगी एक महीने बाद, एक भी इधर उधर अगर कर दिया तो केस हो जाए, पहले ये पैसे हमारे भगवान के हैं उसकी सेवा के लिए, ऐसा ही समझना है। एक परिवार हमने देखा वो माता जी मार्केट से सब्जी लेके आती है बाबा के ट्रांसलेट के लिए, उसके पति केवल सैलरी मिलती है बाबा के ट्रांसलेट के आने फिर लेते हैं, कोई भी वस्तु खरीद के लाएंगे मार्केट से कपड़ा बाबा के ट्रांसलेट के आने फिर होता है, बाबा की तरफ से हमको मिलता है समर्पण भाव। उसके बाद में यू अर्थात यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिकल लाइफ, जो ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल में यूज करना है, केवल ज्ञान रखने के लिए नहीं सुनने के लिए नहीं यूज करना है उसको। उसके बाद में वी विजिटिंग अदर सेंटर, एक सेंटर से दूसरे सेंटर जा रहे हैं तो निमित्त बहन की लेटर होना चाहिए, ऐसा नहीं हमारी पहचान बहुत है हम तो कहीं पे भी चले जाएंगे लेटर, हम तो मधुबन ऐसे ही चले जाएंगे लेटर, अनुभव भी नहीं होगा कुछ। एक सेंटर से दूसरे सेंटर जब जाते हैं तो विधि पूर्वक जाना है और विशेष जब भोजन की व्यवस्था चाहिए तब उसके बाद में डब्ल्यू डब्ल्यू वॉश आफ्टर पोर्शन पेट साफ हो जाए उसके बाद में स्नान करना ये नियम नहीं बदले वो सब करते हैं। एक्स एक्स अर्थात एक्सरे एक्सरे अर्थात सेल्फ चेकिंग एक बताया चार्ट जो रात में लिखना है सेल्फ चेकिंग अर्थात ओवरऑल सेल्फ चेकिंग करते रहना है इसको कहते हैं एक्सरे वाय योग निद्रा और जेड झील झील अर्थात उमंग उत्साह जो भी सेवा करो उमंग उत्साह से करो अभी एक दो लाइन योग निद्रा के बारे में फिर क्लास पूरा करते हैं। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं योग निद्रा पर योग निद्रा क्या है योग निद्रा अर्थात ऐसी नींद अगर 15 मिनट नींद करो तो अनुभव होगा कि 2 घंटे की नींद हो गई शरीर को नींद की आवश्यकता नहीं है शरीर को आराम की आवश्यकता है और आराम लेने का एक मार्ग है नींद एक मार्ग है अगर वही कोई दूसरे मार्ग से लिया जाए तो नींद की आवश्यकता नहीं है योग निद्रा ऐसा एक मार्ग है जिसमें क्या करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी ध्यान से सुने में इसको रात में जब सोने जाते हैं पहले तो जितने डिजिटल है इसको थोड़ा शरीर से दूर और हो सके तो आधा घंटा पहले नेट ऑफ अनलेस एंड अंटिल बहुत इमरजेंसी तो ये बेड है और इसमें हम अगर सोते हैं तो फर्स्ट स्टेप है योग निद्रा की शरीर को ढीला छोटी हो जाए इसको कहते हैं शवासन दूसरी स्टेप है श्वास की तरफ ध्यान श्वास आगे जाए इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इनहेल एक्सहेल थोड़ी देर तीसरी स्टेप रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस चेतना को पुनः शरीर पूरे शरीर में घुमाना है पैर के अंगूठे से चालू करना पैर का अंगूठा रिलैक्स तलवे रिलैक्स घुटने रिलैक्स जांघ रिलैक्स पेट रिलैक्स एक एक शरीर को देखते जाना है सोते सोते रिलैक्स 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 थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप एक शक्तिशाली संकल्प लेना समान वाला मैं परम पवित्र आत्मा हूं और आत्मा को देखना है मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं और मुझ आत्मा से सारे शरीर में पवित्रता की किरणें फैल रही है जितनी बीमारियां शरीर में सब ठीक हो रही है प्योरिटी में जितनी हीलिंग एनर्जी है उतनी किसी भी दवाई में नहीं है संसार हीलिंग पावर है पवित्रता उपचारक शक्ति मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें सारे शरीर में से समान धीरे धीरे आत्मा शरीर को यही छोड़ दे और मैं आत्मा जा रही हूं ऊपर सूक्ष्म वतन जाए या परम धाम जहां जाना चाहिए बाबा से कुछ बातें करें ये सब सोचते सोचते बेड पे जाने के बाद की क्रिया है पहले दिन सो गए लेटे हुए तब या तो बाबा से बात करो या शक्ति हो वापस आओ और ये करते 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 सो जाए कब नींद आ जाएगी पता पर ये जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं ये सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं अवचेतन मन में कॉन्शियस माइंड शांत है अगर कोई बीमारी से मुक्त होना है तो सबसे बेस्ट टाइम है समान लेने का उद्देश्य है अगर कोई एग्जाम में पास करना है तो यहाँ पर एक संकल्प कि मैं उस एग्जाम में पास हो रहा हूँ होते समय हल्का हल्का संकल्प नींद आ रही है संकल्प करते 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 कोई लोग ऐसा करते हैं क्लास सुनते सुनते सो जाते हैं वो भी ठीक है पर किसी किसी का ज्यादा ही पावरफुल क्लास है तो नींद फिट जाएगी इसलिए सब नहीं करो कोई लोग ऐसा नहीं करते कोई लोग कॉमेंट्री सुनते सुनते सो जाते कोई लोग बाबा की गीत सुनते सुनते सो जाते हैं और कोई लोगों को ये सब करने की जरूरत ही नहीं। जैसे बैठते गए हमारे पास एक भाई है, इतना फास्ट हमने आज तक नहीं देखा, अभी हाथ धोए और बेड पर लिया हॉस्पिटल के, पानी टपक रहा है उसको, अभी पानी भी तक पीना नहीं सूखा नहीं, क्योंकि दो सेकंड में नहीं बचे। पर ये जो मेथड है ये तो कुछ स्टेप्स बताए, इसके संसार में बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, बड़ी 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 सभाओं में लिटा के लोगों को ये प्रयोग किए जाते हैं, एक एक घंटे की कॉमेंट्री अवेलेबल है इसके। बाबा ने ये सब चीजें नहीं बताई है, पर हम योग निद्रा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा योग का नींद का समय भी योग बन जाए, कितना अच्छा होगा, नींद का समय भी योग, और नींद 15 मिनट योग करने के बाद नींद करने के बाद उठो तो ऐसा लगेगा 2 घंटे की नींद पूरी होगी, क्योंकि शरीर रिलैक्स हो शांत मेडिटेशन माइंड डेल्टा स्टेज में गया है, ब्रेन वेव्स एकदम रेट फ्रीक्वेंसी कम है, और जब उठेंगे फिर आंख खुलेंगे तो देखेंगे कि बहुत फ्रेश, किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे कितने नियम हो गए, 26 कार्य दिन में ही आ जाते हैं। अच्छा।